اس پر اس کو ندامت محسوس ہوتی ہے، شرمندگی अब ये तड़प उठता है, ऐसा तड़पता है, ऐसा मिलमिलाता है, गोया कि इसको किसी बिच्छू ने डस लिया, सांप ने काट लिया। तड़प उठते हैं, रोते 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 हिचकियाँ लग जाती हैं, बाद लोग संभालना मुश्किल हो जाता है। आखिर ये चीज क्या है? ये उसी फितरत का नतीजा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस फितरत पर इंसान को बताया। अब जरूरत इस बात की है कि इंसान अपने माँ को इनकी हिफाजत करे, यानी तो फिर माहौल से अपनी हिफाजत करे, यानी पूरे माहौल से, या माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करे, या फिर पूरे माहौल से अपनी हिफाजत करने की कोशिश। ये तो जब तक ये साफ सुथरे माहौल में रहेगा, इसकी आदतें, इसके अखलाक, इसका उठना बैठना, इसकी तबीयत, उसका अंदाज ही अलग होगा। और जो ही ये माहौल से हटता है, बुरे माहौल में जाता है, तो सारी चीजें इसकी बदलनी शुरू होती है। तो बहुत मुबारक है वो शख्स जो बहुत जल्द समझ गया कि मेरा माहौल बदल रहा है, या मैं बुरे माहौल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इसको समझ गए, जिसके दिल में ये एहसास पैदा हो गया, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला सुधरने की शक्लें सही होने की, सही रास्ते पर चलने की सूरत अल्लाह तबारक व ताला पैदा करें। इसीलिए अल्लाह से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ाइनुन इल्म कमज़ोर फ़क़ल्बी फ़ी रिज़ाअका दुआ, या अल्लाह तेरी मर्ज़ी पर, तेरी मोहब्बत पर रहने, मेरी जो कमज़ोरी है उसको दूर करके अल्लाह तू मुझे तक़वियत अता फ़रमा, हिम्मत अता। मैं कमज़ोर हूँ या अल्लाह, मैं बहक जाता हूँ, फिसल जाता हूँ, आपकी मर्जी पर रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कदम डगमगा जाते हैं या अल्लाह, आप मुझे हिम्मत अता फरमाइए, ताकत अता फरमाइए। ये दुआ अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुन, आप अंदाजा लगा जिस जिस चीज का जो हक होता है आप सल्लम ने अदा फरमाया, बंदों के लहज से भी और अल्लाह तबारक व तआला की जात से भी, ये जितना हो सके उससे ज्यादा का तसव्वुर भी नहीं। लेकिन फिर फरमा रहे हैं ऐसा भी नहीं, मैं कमजोर फकर भी मेरी रिदा कर रहा हूँ, अल्लाह तेरी रिदा तेरी खुशनुदी में इसके लिए जो ये साइल बन रही है और मेरे अंदर जो कमी है, या अल्लाह तू उसको कभी सुना ताकत दो। तो इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला इनकी तरफ मुतवज्जो होकर इन सब चीज़ों को मानना, इसीलिए अल्लाह की मोहब्बत मांगी गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगी गई, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत मांगी गई। अल्लाहुम्मा إِنَّا نَسْأَلُكَ حُبَّهُ وَحُبَّ رَسُولِهِ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنَا حُبُّهُ، اللہ جس کی محبت تیری بارگاہ میں میرے حق میں فائدہ پہنچائے ان کی محبت بھی پوجا تھا۔ تو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً یہ مادہ اس کے اندر رکھا ہے، باقی غلط ماحول میں بری صحبتوں میں جانے کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھی کس طریقے سے فرمایا، ان اللہ ضرب مثلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک مثال بیان کر، یہ مثال بیان فرمانے والے اللہ اور ہم تک پہنچانے والے رسول، اس مثال پر ہی ہم کو جتنا دل کے کانوں سے سننا اور اسے دل میں لینا ہے، उतना ही लेने की कोशिश करते हैं। फरमा इन्नल्लाह ज़रब मसलन सिरातम मुस्तकीम, अल्लाह ने एक मिसाल बयान फरमाई, वो क्या है, एक सीधा रास्ता है। एक चीज अल्लाह कन कई सिरात नूरा, उस रास्ते की दोनों जानी दो दीवार है। पहली चीज रास्ता है और सीधा है, दूसरी बात उस रास्ते की दोनों जानी दीवार है। फिर आगे फरमाया लहुमा अबुआ, उन दोनों दीवारों के लिए दरवाजे, कुछ कुछ फासले से दरवाजे, वालल अबुआ भी सुतूर, और उन दरवाजों पर मुनक्कश पर्दे पड़े। अब रास्ता यहां से शुरू हो रहा है, आगे तक चल रहा है। फरमाया वो दाइन यदरू अला रास्ता, रास्ते के सिरे पर, रास्ते के शुरू पर एक आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, और एक वदाइन यदरू फोटो, और रास्ते के ऊपर के हिस्से में वहां एक आवाज देने वाला आवाज दे रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बढ़कर वल्लाहु यदुरु इला दारिस सलाम व यहदी मन यशा, और अल्लाह जल्ल जलालहू व अमर वालहु बंदों को जन्नत की तरफ दावत, सबसे बड़े दाई तो अल्लाह। अब देखिए इस मिसाल में रास्ता है और सीधा है, ये दीन इस्लाम, उसके दोनों जाने दो दीवारें, ये हुदूद हैं, अल्लाह की हदें, अल्लाह ने इसकी इजाजत दी, इसकी इजाजत नहीं दी, यह हलाल यह हराम, ये हुदूद हैं, लिमिटेशंस हदें हैं, लेकिन इन पर पर्दे पड़े हुए, मुनक्कश पर्दे, रंगीले पर्दे, और आमतौर पर इंसान सीधा जाने से भी इधर उधर की चीजों की तरफ ये उसकी तबीयत लपकती है, ललचाती है, वो इधर उधर झांकने की कोशिश करता है, ये उसकी फितरत है। अब पर्दे और वो भी मुनक्कश हो तो जाहिर बात है कि ये क्या है, इस तरीके से वो झांकने की कोशिश करेगा, पर्दा हटाने की कोशिश करेगा। तो फरमाया कि जब वो उन हुदूद पर पहुंच जाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मना करते चीजें हैं, और उन पर जो ख्वाहिशात के पर्दे पड़े, अपनी ख्वाहिशात पे पढ़कर वो उन हुदूद को खुला देगा, और अल्लाह तबारक व तआला की मना करते चीजें और जिनसे अल्लाह ने रोका है उन चीजों को पढ़ जाए। अब जो है इंसान कमजोर है, ज़ईफ है, खुले कल इंसान ज़ईफ़, अल्लाह ने खुद फरमाया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसका बंदोबस्त क्यों फरमाया। बच्चा नादान होता है तो आमतौर पर सभा में भेजते हुए माँ बाप उसको तरह तरह से नसीहत करते हैं, देखो बेटा जितन से जाना, इधर उधर जाना नहीं, सीधा जो है कहाँ जाना कि वहां जाकर उतर जाना, जाते ही फोन करना, फोन बुलाए तो भी जाना नहीं, इस तरीके की कई तरह से हिदायत देते, इसलिए कि वो जानते हैं समझते हैं कि बच्चा नादान है। और अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़े मेहरबान, वो जानते हैं कि बच्चे नादान, इसलिए अल्लाह जिले जलालहू व अमर वालहू ने एक एक नहीं बल्कि तीन तीन तरीके से निगरानी करने वाले, रहबरी करने वालों को मुकर्रर कर दिया। एक तो अल्लाह खुद रहबरी कर रहे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो फरमाया रास्ते के सिरे पर, रास्ते के शुरू में एक पुकारने वाला, वो पुकार रहा, वो आवाज दे रहा, देखो भाई इसकी इधर चले जाए। अब इंसान गाड़ी चला रहा है और ये खैर था उसको बोल रहा है कि वन वे है यहाँ जाम हो, ये उसके हाथ में खैर था ही था। हम दुनिया की चीजों की खैर का ही तो बहुत जानते हैं। ये आज इस हमेशा एक मिसाल पेश करता है, दिन में कभी कोई टू व्हीलर चलाकर और उसका लेंग चलता, हर कोई उसकी तरफ इशारा करते नहीं भाई, क्या मतलब बोले क्यों इशारा कर रहा ये? लाइट सी लगता है, लाइट सी है तो तुमने क्या? वो बोल रहे हैं कि तू तेरी दुनिया का नुकसान कर रहा है, तेरी बैटरी क्या हो रही है, बेकार जो है खर्च हो रही है, तो उसको इशारा कर रहा है, उसके नुकसान से बाहर आने को उसे कह रहा है, उसको रोक रहा है। अब दुनिया की इतनी छोटी चीज के वास्ते उसकी फिक्र करके उसे बोल रहा है। आखिरत के सिलसिले में जितनी बड़ी बड़ी चीजें इंसान कर देता है, हमें ये फिक्र पैदा होती है, हम इस तरीके से रोकते क्या? लेकिन हमारा मेहरबान अल्लाह वो जानता है कि इंसान कमजोर है, इसलिए उसने मुकर्रर कर दिया अकबरों को, रास्ता बताने वालों को, रास्ते के शुरू पर और सिरे पर भी एक दाई है, एक आवाज देने वाला, सही रास्ते की तरफ बुलाने वाला, वो कौन? फरमाया वो है कुरान। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम, यह कुरान ये इंसान को सीधे रास्ते की तरफ बनी कर रहा है। इसमें अल्लाह जल्ले जलालुहु व मनूरहु ने साफ चीजें खोल खोल कर बयान करवा दिया, मुहर्रमात को, अपने हुदूद को, अपने अहकाम को खोल खोल कर, और बड़े शफकत भरे अंदाज में भी, मोहब्बत भरे अंदाज में भी, और कभी जरा डांट डपट कर भी, नबी इबादी अन्नी अनल गफूर मेरे बंदों को कह दो कि मैं गफूर भी हूँ रहीम भी हूँ, बख्शने वाला भी हूँ मेहरबान भी हूँ। लेकिन फौरन फरमाया और सुन लो, गलत फहमी में ना पड़ जाना, सिर्फ मेरी जात पर उम्मीद करते हुए भरोसा करते हुए ना रह जाना कि अल्लाह माफ करने वाली, ये भी सुन लो कि अजाब भी हुआ नजाब, मेरा अजाब वो बड़ा दर्दनाक होता है। जैसे बाप बेटे को कहता है देख अच्छा पढ़े तो ये सबलियत दे, तो नहीं करते तुझे क्या करते, तो जो अंदाज होता है शफकत भरा अंदाज, उसी तरीके से अल्लाह के दिलाने को मनवा दो भी बंदों को करना है। तो कुरान में जगह 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 इंसान की रहबरी की गई है, शफकत भरे अंदाज से, मोहब्बत भरे अंदाज से, कैसे कैसे तरीके से। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने मेहरबान रब से किस चीज में धोखे में डाला, किस चीज ने धोखे में डाला है, तू कहाँ जा रहा है अपने परवरदिगार को छोड़कर, किस तरीके से? तो फरमाया के रास्ते के शुरू में और इब्तिदा ही में एक पुकारने वाला पुकार रहा, और आगे फरमाया वदाइन अला, और रास्ते के ऊपर एक पुकारने वाला है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो परवरदिगार का दाई। बाद मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने फरमाया वो इंसान का जमीर है, इंसान का दिल है, वो खुद इंसान को झिझोड़ता है, वो खुद इंसान को आगाह करता है, शर्म दिलाता है, वो खुद बोलता है कि ये जो तू कर रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंसान का जमीर और इंसान का दिल खुद उसको आगाह करता है। तो बुजुर्गो ये मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हवाले से पेश की, अल्लाह ताला हमको समझ देता है और हम इस बात को समझने लगे کہ ہماری رہبری کا سارا سامان اللہ نے مہیا کیا ہے اور راستہ بھی بتایا اور سیدھا راستہ ہے اور چلنے کو بھی کہا جا رہا ہے. اب اگر ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں تو پھر کس کا قصور ہے؟ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بزرگوں یہی ہے کہ انسان کی زندگی دنیا کی مختصر ہے اور کب جائے گا انسان دنیا سے معلوم. موت برحق ہے بر وقت ہے, سب کو آنی ہے لیکن آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں, یہ بڑی حقیقت. تو اس لیے اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری, اور کب آئے گی ایک سلام پھیر کے دوسرے سلام پھیرنے تک مجھے یقین نہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے. یہ حال ہے تو ہم اور آپ کو کتنا اس سلسلے میں آگاہ ہونا چاہیے, کتنا اس سلسلے میں جو ہے بیدار ہونا چاہیے اور جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو اس لیے بزرگ ان مجالس کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اور رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں. جتنا ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے گا تو زندگی کا انداز بدلا ہوا کو خود محسوس ہوگا. ہر ہر چیز وہ الگ انداز کی ہے, عام انسانوں سے ہٹی ہوئی ہو, اس کا ظاہر بھی, اس کا باہر بھی, اس کا باطن بھی. اور جیسے آپ آج تعلیم میں جو شروع سے توازو کے بارے میں, عاجزی کے بارے میں, انکساری کے بارے میں چیزیں پڑھی جا رہی تھی, یہی وہ چیزیں ہیں اصل جو ہمارے اندر آنی. جتنا انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے سامنے دل میں آئے گا اتنا ہی وہ عاجز بنتا جائے گا. اس لیے کہ جب وہ اللہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں کہتا رہے گا اتنا ہی اپنے بارے میں چھوٹا ہوں, میں حقیر ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, یہ وہ دل میں لاتا رہے گا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اللہ جل جلالہ کو کے سامنے یہ عاجزی ظاہر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا اٹھائے گا. یہ اندر کی تبدیلی یہ بہت ضروری ہے. اسی کے لیے دوا کے طور پر وظائف بتائے جاتے ہیں اور پرہیز کے طور پر کچھ چیزوں کا ہمیں پرہیز بتایا, ان کا جتنا ہم خیال رکھیں گے جی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ, ہماری نسبت جلدی بھی قائم ہوگی, مضبوط بھی قائم ہوگی. اور یہ نسبت اگر کچھ حاصل ہو جائے, اس کا اندازہ کچھ ہمیں ہونا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو ہم کو مل رہی ہے. اور انسان یہ محسوس کرے گا کہ ہائے ہائے ایک بڑی مدت گزر گئی, میری عمر ضائع ہو گئی, کاش کہ یہ حقیر نسبت مجھے پہلے ملی ہوتی, میری زندگی کا رخ اور انداز یہ حل ہوتا. اس کو سوچ سوچ کر انسان افسوس کرے گا. تاہم جب بھی یہ نصیب ہو یہ اللہ کی نعمت ہے, اب اس کی قدر کرنا, اس کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. بہرحال اس عاجز نے حضرت دامت برکاتہ نے جو مثال پیش کی اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی, اس کی حفاظت, عام انسانوں اور اللہ کے نیک بندوں کے درمیان اس سلسلے میں کیا فرق ہے وہ دوبارہ پیش کرتا ہے. فرمایا کہ ایک پانی کی ٹینک ہے, اس کے اوپر نل ہے, اس میں سے پانی ٹینک میں آ رہا ہے. اب اگر اس ٹینک میں جو پانی ہے اس کی حفاظت کر لی جائے تو وہ خود کو بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والی چیز بنے گی. اور اگر اوپر سے تو پانی پھٹ رہا ہے, دیکھیں نیچے سے سوراخ ہے تو پانی تو پھٹ رہا ہے ایک طرف سے لیکن دوسری طرف سے وہ جا رہا ہے. اسی طرح جیسے ایک ماحول میں آنے کے بعد دل کی کیفیت بنتی ہے, اندر سے کچھ ضمیر بیدار ہوتا ہے, کچھ احساس جاگتا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. اس نعمت کی حفاظت کر لیں گے تو خود کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. ہاں اس نعمت کو اگر ضائع کر دی تو پھر ہماری پرانی حالت ہو جائے گی کہ ایک چیز ملی اور پھر وہ ہاتھ سے گئی, ये ना बने, इसके लिए जो परहेज बताते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। निगाह का परहेज, कान का परहेज, जुबान का परहेज, ये दिलो दिमाग जज्बात का एहसास का परहेज, ये जरूरी है। इसमें खास और खास एक बात का एहतमाम करें कि जुबान हमारी जो है बेमौका न चले, बेजरूरत न चले। आज जो है बोलने को भी बेकार बात, बेजरूरत बात बोलने को एक बीमारी ही नहीं समझता, हालांकि वो बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी, अल्लाह हमें इसकी समझ देता। इसलिए जुबान को जितना हम एहतियात से ठीक रखेंगे, जरूरत पर बोलेंगे, फिर उसकी कैफियत देखें, फिर हमारा ताल्लुक अल्लाह से और बंदों से कैसा होता है हम खुद महसूस करें, समझ रहे हैं। तो इसलिए आज की मजलिस में ये क्या हम जुबान का इस्तेमाल, आंखों के बारे में तो है ही है और बार बार इसके मुजाकरे होते ही रहते हैं, इसलिए कि ये दौर तो और फितनों का दौर, हर तरफ इतने ही फितने हैं और आंखों की जो बदनजरी की बीमारी है एक वबा और बला की तरफ फैली, तो फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उससे सख्ती के साथ हमको मुकाबला करना है और अपनी हिफाजत करनी है। उसके साथ साथ आज ये आयत करके जाएंगे कि इंशाल्लाह जुबान की हिफाजत करेंगे, बेमौका उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए हम घंटा बयान करें, दो घंटा बयान करें, समझ रहे हैं, उसको कितना भी बोलते रहे सुनते रहे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले से फैसला हो जाएगा। फरमाया मिन हुस्नी इस्लामी मरई तर्कुहुम अलैहि, इंसान के अच्छे मुसलमान होने की निशानी क्या, वो लाया नहीं चीजों को। अब वो अच्छा मुसलमान है उसी वक्त शुमार होगा जब वो लाया नहीं को छोड़े, बेमतलब की बेजरूरत की बातों को और कामों को छोड़े। जब तक वो नहीं छोड़ता उसका इस्लाम अभी तमाम नहीं, मुकम्मल नहीं, अच्छा नहीं होता। अब जिंदगी भर हम सारी चीजें कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन लायानी को नहीं छोड़ रहे, बेकार चीजों को नहीं छोड़ रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारा इस्लाम ये भी अच्छा नहीं, ईमान तो बहुत दूर की बात है, वो तो दिल की कैफियत का नाम, अंदर की गहराइयों की बात है। तो इसलिए जो है लायानी से हम बचेंगे ठीक, और बेतकल्लुफी से, बेतकल्लुफी बे एहतरामी को बचा, और बेतरामी से दिल टूटना शुरू हो जाए, और दिल एक बार टूट जाते हैं तो फिर जुड़ते हैं, समझ गए। तो इसलिए इसका ख्याल रखेंगे, जुबान के इस्तेमाल में बहुत एहतियात है। अल्लाह जलालुहु ने जो हमारी सेटिंग की है वो इतने जो है दांतों और दाढ़ों के दरमियान में जुबान को रखा है, क्या कि क्या कि यह शिला बंद है, दोनों तरफ से जो है इसके लिए बाड़ लगा दी है। अब इसको बाहर आना है तो इनको फलान कराना है। अल्लाह जलालुहु ने ये हिफाजत का पहले से कुदरती इंतजाम करवा दिया। एक बुजुर्ग ने फरमाया सास और बहू में हमेशा झगड़ा होता था, और बहुत झगड़ा, बहुत बातें होती। एक बार वो जो है वो बहू गई किसी के पास, ये एक तावीज दे दीजिए कि हमारी सास के सिलसिले में कोई जो है फैसला हो, ये वो कि हमारा झगड़ा आपस का खत्म हो, ये इस तरीके से वो मुकदमा लेकर गई। अब जिनके पास कहते वो बेचारे औरत ही थी, समझिए तो अच्छी थी वो समझ गई नफ्सियाती बीमारी क्या है, ऐसा करके तो उसने कुछ भी नहीं कहा, एक आदत लेके कुछ लकीर वगैरह खींची और उसको लपेट के दे दिया और कहा कि देख जब गुस्सा आए और बात शुरू हो उसको मुंह में रख लेना और मुंह को खिड़की बंद कर लेना, अब क्या झगड़ा होगा, पूरी बीमारी खत्म। अब मुंह खुलेगा तो ही इधर शेर को उधर समझ करना ऐसा शुरू होता है। जब मुंह बंद हो जाए तो फिर दूसरी तरफ से इंसान क्या बोलेगा, वो बोलने की जरूरत नहीं करेगा, वे बोलने को बेजरूरत समझे। तो इसलिए जो है अपने मुंह का जुबान का इस्तेमाल एकदम कंट्रोल के साथ हो, बेजुबान हमारी बेजरूरत हमारी जुबान न चले। आज इसका हम अल्लाह की बारगाह में जो है इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला से सिलसिले में दुआ मांगेंगे और खुद हम कोशिश करेंगे, फिर हम खुद इसका असर देखेंगे कि आपस में कितनी हमारी मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ एहतराम का इकराम का इस तरीके से बर्ताव हो रहा है। अल्लाह तुम्हें इन सिफात को हमारे अंदर पैदा करवाए।
Yeah. Thank you.
थोड़ी देर के लिए थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। अगली बार हर तरफ से हट कट कर शुभ होकर अल्लाह की तरफ से जरूर मिल जाए और अल्लाह से खुद मांगे मेरे दिल को हर तरफ से फेर कर आपकी तरफ से जरूर आँखों को बंद करके निशाचर को कायम दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उसे हट कर अल्लाह की याद में डूब जाए। बंदा जो अपने अंदर जानता है उसे अपनी असली तस्वीर नजर आती है, दिल के दरीजे को खोलती है, अपनी असली तस्वीर को देखती है, नीयत से करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुर्मत और दुनियादी बंदाब सबसे दूर हो रहे हैं और मेरा दिल जज्बे शुक्र से कह रहा है Thank you.
Thank you. तक हम आपसे दूर दूर रहेंगे सर, तो कदम आपकी तरफ उठाते हैं, जब से चेता है बातें हैं, हम चार कदम पीछे कभी जो इतना करीब होते हैं आकार हमारे लिए तहज्जुद भी आसान हो जाती है, हमारे लिए बड़ी बड़ी नेकियां आसान हो जाती है, हमारे लिए हर चीज आसान हो जाती है, पर कभी इतने दूर हो जाते हैं, हमारे लिए फर्ज नमाजे में मुश्किल हो जाती है। अल्लाह बड़े बड़े गलत काम कर बैठते हैं, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह कोई और गलत नहीं है, अल्लाह इतना बड़ा मजमा आपकी वार्ता में हाजिर है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, अल्लाह अल्लाह बाज भी है, अल्लाह दया इस्लाम भी है, अल्लाह जिन्हें देना
जाने से बचा दे, अल्लाह तालीम की
کرم لگا چکی ہے اللہ اللہ سینوں کو آپ کی محبت سے بھر دیجیے، اللہ ذہن کو کھول دیجیے، وہ ذہن عطا فرمائیے، وہ جذبہ عطا فرمائیے، پڑھنا پڑھانا آسان فرما دیجیے اللہ، آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اللہ آسان فرما دیجیے، اللہ آسان فرما دیجیے، اللہ آسان فرما دیجیے، ترقیات سے دوار دیجیے، بلندیاں عطا فرمائیے، روحیاں عطا فرمائیے اللہ، اللہ مکرم کے فیصلے فرمائیے اللہ، جو واقع ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو ماننے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے اللہ، نقصان سے بچائیے، نقصان سے بچائیے اللہ، اللہ کی راہ میں خسارے سے بچائیے، بے برکتی سے بچائیے، قلت سے بچائیے، قلت سے بچائیے، حرج سے بچائیے، فرج سے بچائیے اللہ، ہر قسم کے دھوکے سے بچائیے اللہ، ہر قسم کے قدم کے پھسلنے سے بچائیے اللہ، اللہ دشمن دشمنوں سے بچائیے اللہ، شریروں کی شرارت سے بچائیے، عاشقوں کے حسد سے بچائیے اللہ، وبا سے بلا سے بچائیے، نظر سے زہر سے بچائیے، دنیا کے اثر سے بچائیے، دنیا اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے اللہ، جو مانگنے سے رہ جائے وہ بدل اللہ، اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین.